ओम शांति। सुखद अनुभवों की जगह आप पहुंचे हुए हैं। हो रहे हैं अनुभव? नहीं हो रहे? ढीले डाले अच्छे अच्छे हो रहे? कुछ को हो रहे, कुछ को नहीं। चेहरे बता रहे थोड़े थोड़े, कुछ गड़बड़ है? है नहीं? माताओं को हो रहे हैं बाबा से मिलन के अनुभव? इस विषय को थोड़ा सा सहज भाव से समझ लेना है। जब से कोई आत्मा बाबा के पास आती है, यदि वो दिल से स्वीकार कर लेती है, ये मेरा बाबा है, मेरा है, तो बाबा भी उसे दिल से स्वीकार कर लेता है, ये मेरा बच्चा है। और बाबा ने एक बहुत सुंदर बात कह दी है, जो उसको समझ सके, सब तो नहीं समझते, मैं जानता हूं। मैं अपने बच्चों के साथ रहता हूं। रहस्य यही है कि वो साथ रहता है, पर हम उसे साथ रखते हैं या नहीं। बहुत हंसी मजाक में बाबा ने पावरफुल बात कह दी थी। बच्चे तो बाप से भी अधिक पावरफुल हैं। बाबा कहते हैं मैं तुमसे कंबाइंड रहता हूं, और बच्चे अलग कर देते हैं, सर्वशक्तिमान को भी हटा देते हैं, इतने पावरफुल हैं। समझ में आई बात? नहीं आई, ख्यालों में नहीं उतरी, उतार लेना। ये शब्दों को समझने की बात नहीं, ये डीप अंडरस्टैंडिंग की चीज है। गहरी रूप से इनको समझ लेना। और इसका सार ये है, अब सहज भाषा से, कि अगर हम याद रखें, सारा दिन कोई रटने की बात नहीं, आपने सवेरे उठकर एक बार अच्छी तरह अपने को फीलिंग दे दी, शिव बाबा सर्वशक्तिमान मेरे साथ है, बस काफी है, एक बार रात को कर लो संकल्प, तो ये नेचर बन जाए कि वो हमारा साथी बन गया है, गुड फ्रेंड बन गया है, खुदा दोस्त हो गया है। ये हमें अपनी आंतरिक स्मृतियों में समा लेना है। ये काम सबको करना है। प्रैक्टिकल में रोज सवेरे उससे मिलन के सुंदर अनुभव होंगे, मुरली के समय उससे मिलन के सुंदर अनुभव होंगे, ये करने हैं सबको। जब आप मुरली सुने तो क्या बाबा कह रहा है, इसमें लिखना है मुझे, इसमें ये बात अच्छी आ गई, इसमें नहीं रहना है केवल, लेकिन इस फीलिंग से मुरली सुनना है। भगवान मुझ आत्मा से बातें कर रहा है, सामने है बिल्कुल, बातें हो रही हैं, और वो मुझे कुछ याद दिला रहा है, स्मृतियां दिला रहा है। और जब वो हमें स्मृति दिलाता है तो परमानंद उनको आएगा जो उस स्मृति में स्थित होते जाएंगे। इस भाषा का अर्थ होता है, मान लो बाबा याद दिला रहे हैं, बच्चे तुम सतयुग में संपूर्ण निर्विकारी देवता थे, पहुंच जाएं हम वहां, उस डीप फीलिंग में चले जाएं कि हम थे। जब व्यक्त मुरली में पीछे बाबा ने बाबा के मिलन के दिन कहा, हम ही विजयी थे, विजयी हैं, विजयी होंगे, ये नशा विजयी बना देगा। बहुत बड़े रहस्य भरी बातें हैं ये, सुनने में बहुत सिंपल हैं क्योंकि हम रोज सुनते हैं और हम इन चीजों को जान चुके हैं, पर गहरा मनोविज्ञान है इनके पीछे। हमारी सोई हुई शक्तियां जग जाती हैं। माया पर विजय पाना है सहज काम नहीं है, सब जानते हैं सहज नहीं है। अश्रतन माया को संपूर्ण परास्त कर देते हैं, फिर सौ माया को जीत लेते हैं अंत तक। बाकी सबका युद्ध चलता है, किसी का थोड़ा किसी का ज्यादा। काम को जीतना सबसे सूक्ष्म चीज, मोह को जीतना उससे भी सूक्ष्म चीज, तेरे मेरे को जीतना और सूक्ष्म चीज। याद आए मैंने कल पहले भी इनको जीता था, याद आए तो इनको जीतने की शक्ति मेरे अंदर है, वो जागृत हो जाएगी। कई लोग थोड़ा गलत सोचते हैं, हमें तो आठ की माला में आना नहीं है, हमें तो 108 की माला में आना नहीं। सोचते हैं कोई आप में से भी ऐसा, आज बहन जी पूछ रही थी सवेरे, हमें तो 108 में आना नहीं, अपना तो 9 लाख ही अच्छे हैं, क्यों इस नई टेंशन में जाएं, ये करना वो करना, अब सुख भरा जीवन मिला, अब आनंद से जिए। लेकिन स्टूडेंट उसी को कहा जाता है जिसके मन में कुछ करने की, कुछ पाने की उमंग हो। अब देख लो अपने बच्चों को, ढीला ढाला हो, जितने नंबर आएंगे ठीक आ जाएंगे, हमारे घर में तो बिजनेस है ना, क्या करना हमें इस पढ़ाई के टेंशन में जाने के। ठीक बात है, बिजनेस है वो भी सीख लेंगे, लेकिन पढ़ाई से बुद्धि का विकास होता है। अगर पढ़ाई में डल रह गए तो बिजनेस में भी डल हो जाएंगे। तो हम सभी अविश्वरीय सुखों में जीवन को, जीवन की पालना करें। सभी एक संकल्प करेंगे, ईश्वरीय सुख मिल रहे हैं, ईश्वरीय प्यार मिल रहा है, उसकी बहुत अच्छी पालना हो रही है, सुखद अनुभूति हो रही है। हो रही है या नहीं? या भी युद्ध बहुत चल रहा है, युद्ध भी हैं। मैं देखता हूं बहुत ग्रस्त में रहने वालों को, कोई एक व्यक्ति परिवार का एक जीवन का सुख नहीं लेने दे रहा है। लौकिक में भी ये बहुत हो रहा है, एक ने ही सबके नाक में दम किया हुआ है, अनुभव होगा बहुतों को, अपना नहीं तो संबंधियों का, पड़ोसियों का, एक ही काफी है सबकी परीक्षा लेने के लिए। जब एक सबकी परीक्षा लेकर सबको तंग कर सकता है, तो क्या एक इस देवी, सोचो भागे इस देवियां बोलो, क्या एक इस देवी बोल रहे, ठीक बोल रहे, अपने घर के वातावरण को शांति में, प्रेम में, सुख भरा नहीं बना सकती? बना सकते हैं, लेकिन हमें अपने उस स्वमान को बढ़ाना होगा। ऐसा ना हो रहा हो, चिंतन कर लो यही, ऐसा ना हो रहा हो कि कोई एक आपके अगले कल्प को नष्ट करने जा रहा हो। समझ गए ना, नष्ट करना, संगम पे पुरुषार्थ नहीं होता, अगला कल्प बेकार गया। द्वापुर से भक्ति में मांगते रहेंगे, भीख है प्रभु जी ये दे दो, शांति दे दो, ये विघ्न आ गया इसे हटा दो, यहाँ सफलता करा दो, बुद्धि दे दो, मांगते बन जाएंगे। क्या करेंगे अगर आपके परिवार में एक है ऐसा और सबके में है? मैं ठीक कह रहा हूं या नहीं? जितने भी यहां बैठे हैं और जितने भी संसार में परिवार हैं, सब में एक है जो हिसाब लेने आ गया है कि चले हो भगवान से मिलने, मैं देखता हूं कैसे मिलते हो, भाग्य बनाने चले हो ना, मेरा बिगाड़ा था पिछले जन्म में, बदला लेने आ गया हूं, बिगाड़ा था हमने। किसी के साथ भी बिना कारण के कुछ भी नहीं हो रहा है, समझ ले अभी, जो कुछ जिसके साथ हो रहा है उसका जिम्मेदार वो स्वयं है, उसके कर्म है, बहुत ध्यान देंगे इस बात पर। उसके जिम्मेदार उसके कर्म ही हैं, अब के या पिछले। बहुत लोग आते हैं, हम बहुत परेशान हैं। वही किसी एक व्यक्ति से, अभी परेशान करने वाला परेशान कर रहा है और हम हो रहे हैं। हम ज्ञानी, हम योगी, हम परेशान हो रहे हैं। वो व्यक्ति न ज्ञानी न योगी, तो कौन पावरफुल है? तो पावरफुल होना चाहिए ज्ञानियों को, होना चाहिए या नहीं? अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, उस पर काम करना। उसकी कमजोरी, मान लो कोई व्यक्ति आपको बुरा बोलता रहता है, उसकी कमजोरी, उसको हम अपने आगे बढ़ने का साधन बना लें। उसकी कमजोरी को अपने को शक्तिशाली बनाने का आधार बना लें। और ये कैसे होगा? वो व्यक्ति बुरा बोल रहा है, हम ऐसा प्लान बना लें कि हम अपनी स्थिति को बिगाड़ेंगे ही नहीं। हो सकता है? सोच लो, आपका अपना बच्चा ही है, वह आपको तंग कर रहा है। कल भी एक परिवार आया, आज ही आए सवेरे। माँ जो है लड़के से बहुत परेशान, मेरी सुनता नहीं। मेडिकल किया है कुछ, कहा MBBS करना चाहता है। हम कहते हैं ये करो, वो कहता है नहीं ये करूंगा। बोलो माताओं को क्या करना चाहिए? बाप नहीं सोचते, बाप मस्त रहते हैं। उसका बाप बैठा था, कहता है ठीक है जो करना चाहे कर लो, मम्मी तंग, मेरी सुनता नहीं है। बोलो मम्मियों को पूछता हूं, क्या करेंगे? तंग होते रहेंगे? अब ये दुखी उससे, बोलो उत्तर दो। हाँ, क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए? मैंने इसको यही समझाया, मैंने कहा एक मास तुम शांत रह के देख लो, कुछ न बोलो उसको। परमाताओं से शांत रहा नहीं जाता, मेरी सुनता नहीं है। वो तो चाहती हैं खाओ भी मेरे कहने से, श्रीमत है, बाथरूम भी जाओ तो मेरे कहने से। अब मैं कहूँ अभी नहीं जाना तो नहीं जाना है, चलेगा ऐसे काम? तो मैंने उसको बहुत समझा, उसका पति भी कह रहा कि ज्यादा न कहो उसको, और कहना भी चाहिए तो कैसे? बाबा ने हम सबको बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है, स्वयं से बाबा टीचर बनकर आया। किसी गलती भी होती है ना, होती थी, राइट समय पर दूसरे व्यक्ति का मूड देखकर अच्छे शब्दों में उसको अच्छी बात कहनी है। माताओं का क्या होता है, भाइयों का कहीं कहीं होता है, पर माताओं का जब मेरा बच्चा है ना डॉक्टर बन गया तो क्या है, है तो मेरा ही। अधिकार से बात करते हैं ज्यादा, ठीक है आपका उन पर अधिकार है, लेकिन अब वो डॉक्टर बन गया, उसके पास अच्छी बुद्धि है या नहीं, होगी या नहीं, बताओ माताओं। कहेंगे हमारे पीछे पड़ गए, ऐसे नहीं, मैं पूछ रहा हूं। अरे उसको थोड़ा फ्री भी तो छोड़ो, छोड़ दो फ्री। बाबा ने क्या कहा मुरली में उस दिन, हे मुक्ति दाता के मास्टर, मुक्ति दाता बच्चों, बोलो आगे, भूलना नहीं इसलिए पूछ रहा हूं, बोलो। हे मुक्ति दाता बाप के मास्टर, मुक्ति दाता बच्चों, अपने को मुक्त करो। लिख लो, भूल जाते हैं सब, फटाफट भूल जाते हैं। अपने को मुक्त करो, है डायरी पेन? नहीं, दोनों के पास नहीं है, स्टूडेंट ही नहीं है, यात्रा करने आए हैं, विद्यार्थी है ना। लिखो, लिख लो, सबको लिखाता हूं। अपने को मुक्त करो, भगवान बोल रहा है। अब अगर एक माँ इस छोटी सी बात से अपने को मुक्त नहीं कर रही है कि बच्चा मेरी ही सुने, तो वो परेशान रहेगी ही। उसकी परेशानी को कोई दूर नहीं कर सकेगा, क्योंकि मनुष्य परेशान है अपने स्वयं के संस्कारों से। एम आई राइट? सोचना अच्छी तरह। तो हमें स्वयं को मुक्त करना है। यही तो समय है जब भाग्य विधाता से जन्म जन्म का भाग्य प्राप्त कर सकते हैं। ये समय निकाल दिया उलझनों में तो पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हम भविष्य का भाग्य नहीं बना रहे। आने वाले जो दिन होंगे उनमें हमारी स्थिति बहुत अच्छी रहे, ये भी हम तैयारी कर रहे हैं। है या नहीं जरूरी? आने वाला समय अति अति खतरनाक है। क्या विचार है भाइयों का? माताओं को छोड़ देते हैं, बोलो भाइयों का क्या विचार है? है या नहीं? मुरली सुनेंगे अभी आप। सब कुछ जाएगा, दिवाला निकलेगा हर एक का, सब कुछ जाएगा, खाली हो जाएंगे स्थूल रूप में सब। आनंदित वो रहेंगे जिन्होंने बाबा से सब कुछ प्राप्त कर लिया है, बाकी सब दुखी हो जाएंगे। विनाश काल के लिए बाबा एक लाइन बोला करते हैं। मैं विनाश की बहुत सारी बातें नहीं सुनाता, क्योंकि सबके चेहरे उतर जाते हैं। हमने इतनी मेहनत से कमाया, सब चला जाएगा? कैसा बाबा है, महाकाल बन के आया है। इतनी मेहनत से तो मकान बनाया, इतनी कमाई करके सब खत्म हो जाएगा हमारा? ये भूल जाते हैं कि सोने का मिलेगा, मिट्टी का खत्म होगा, सोने का मिलेगा। जो अब आपके पास मकान है उससे कितना बड़ा मिलेगा बताओ? भाई लोग से पूछ रहा हूँ। बहुत बड़ा मिलेगा ना, मिनिमम। छोटे से छोटे का घर भी एक वर्ग किलोमीटर में तो होगा, 100 बाई 100 मीटर, एक वर्ग किलोमीटर हो गया ना। बड़े बड़े होंगे जो, और साहूकार उनके और बड़े, क्योंकि घरों में ही सब कुछ होगा, खाने पीने के साधन, फल फूल सब कुछ, तालाब सुंदर, गाय रखनी है तो वहीं सुंदर, एक अच्छी अच्छी जगह मिलेगी। तो वर्तमान जाएगा तो मिलेगा क्या, उसकी तरफ नजर डालो। तो बाबा कहते हैं ऐसा समय आएगा, ये संसार में मनुष्य सरसों के दानों की तरह पिस जाएंगे। क्यों पिसेंगे? इधर से उत्तर आए अब। क्यों पिसेंगे जानते हैं आप सभी? वो नई बात नहीं, मैं केवल तैयार करा रहा हूं सबको। क्यों पिसेंगे मनुष्य? पाप बहुत कर लिए हैं पिछले दो जन्म में, एक जन्म इससे पहले का और एक ये। दो जन्म में मनुष्य ने इतने पाप कर लिए कि द्वापर से और कलयुग तक भी नहीं किए थे। बोलो क्या विचार है? ठीक बात है। अति पाप, सबसे बड़ा पाप कौन सा? काम, महाशत्रु। आग लगी है काम की संसार में, बुरा हाल है युवक युवतियों का, बड़ों का भी बहुत बुरा हाल है। सबसे बड़ा पाप कर रहे हैं, आत्मा को बिल्कुल शक्तिहीन कर दिया है। उसमें बहुत बड़ी मदद हो गई मनोवैज्ञानिकों की, जो विदेश के थे, काम वासना को नेचुरल बना दिया उन्होंने। भारत की सभ्यता जो बहुत महान थी वो लोप हो गई, भारत वालों ने मान लिया, लास्ट पीढ़ी ने, हमारी युवकों ने। तो सभी अब प्रभु मिलन का सुख लेंगे। डरने की बात नहीं, मैं डराने के लिए कुछ नहीं कहता, तैयारी कराने के लिए। एक, हमें बहुत पुण्य आत्मा बनना है और बहुत अच्छा पुरुषार्थ करके अपने को श्रेष्ठ खजानों से भरपूर कर लेना है, ताकि संसार से जाएं। कैसे जाएं? देखो आपका बच्चा कहीं बाहर नौकरी करने बिजनेस करने गया हो, बहुत अच्छी कमाई करके आए तो सिर उठा के आएगा ना, और सब कुछ गंवा के आए तो आंखें भी नीचे सिर भी नीचा। हम भगवान के पास जाएं, भरपूर होकर जाएं, वो भी बाहें फैलाकर हमारा वेलकम करे, आओ मेरे भाग्यवान बच्चों, भरपूर होकर आ गए। सिर झुका कर न जाएं, बाबा सब कुछ गंवा के आ गए, वो थोड़ा सा दे दो नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है। भट्टी में आप सब आए हैं, यहां से भरपूर होकर भी जाएंगे और भरपूर रहने का प्लान बनाकर भी जाएंगे। कौन सुख लेगा इस जीवन का, सोच लें। थोड़ी सी बातें मैं आपको कहता हूं, पुरुषार्थ की बातें तो रोज आ रही मुरलियों में, कुछ कहने की जरूरत नहीं होती, पर उन पर अभ्यास करना होता है। स्वयं को इस देह में सारथी होने का अभ्यास करेंगे। मैं इस देह में सारथी हूं, ये मेरा रथ है, मैं इस रथ को चलाने वाली आत्मा, इसकी मालिक सारथी, लगाम मेरे हाथ में है, और इस खेल को साक्षी होकर देखने की प्रैक्टिस, साक्षी होना अध्यात्म की, ज्ञान योग की, हमारी साधनाओं की सर्वोच्च स्थिति है। साक्षी क्या होता है? साक्षी का अर्थ, ये खेल चल रहा है संसार का, हर आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है, सबके पार्ट एक्यूरेट हैं, यहां किसी का कोई दोष नहीं। चिंतन किया करना रोज इन बातों पर, यहां किसी का कोई दोष नहीं, सब अपने अपने कर्मों के अनुसार सब कुछ पा रहे हैं। जो आज आपके बच्चे बनकर आए, वो क्या क्या साथ में लाए ये किसी को पता नहीं है। उनको साक्षी होकर देखना भी है और सकास भी देनी है, केवल देखना ही नहीं सकास भी देनी है। ये सुंदर नाटक कैसे चलता आया, इस पे जो बहुत अच्छा चिंतन करेंगे उनकी स्थिति बहुत सुंदर हो जाएगी। योग लगाना अलग चीज है, ये खेल कैसे चलता आ रहा है, हम कैसे धीरे धीरे उतरे हैं, हर 5000 साल में ऐसे ही चलते आए हैं। जो विनाश सब होगा वो तो हमने हजारों बार देखा है, मैं 1000 बार कह रहा हूं, देखा तो अनंत बार है। मान लो कोई काम हमने 10000 बार किया हो, अब करना कैसा लगेगा, खेल। हमने ये खेल हजारों बार खेला है, चिंतन गहराई से चिंतन में ले आओ इसको। जो अब हम हैं यहां बैठे हैं, 5000 साल भी ऐसे ही थे, ऐसे ही होते रहे हैं, होते रहेंगे। ये गहन चिंतन हमारी स्थिति को व्यर्थ से मुक्त करता है, इसको सुदर्शन चक्रधारी होना कहते हैं, इसकी बहुत जरूरत है। तो बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे सारथी और साक्षी होने का, जिनको बाबा से मिलन के अच्छे अनुभव करने हैं। बाबा से मिलन के अनुभवों का अर्थ है, बाबा प्यार का सागर है, उसके प्यार की अनुभूति, लगे कि भगवान हमें बहुत प्यार करता है, प्यार में वो मदद करेगा। वो ज्ञान का सागर है, उसके ज्ञान से बुद्धि भरपूर हो जाए, ये बहुत सुंदर बात है, सभी इसको नहीं जानते। ज्ञान का सागर है, उसका ज्ञान उसके लिए थोड़ा ही है, हमारे लिए है। हम उस ज्ञान का सुख प्राप्त करें। ज्ञान ऐसा नहीं जैसे बच्चों की एजुकेशन होते, रट लिया और पेपर लिखाए। ज्ञान हमें बहुत सुख दे रहा है, जीवन जीना सिखा रहा है, ज्ञान के अनुसार हम चलने लगे, वो शांति का सागर है, जीवन शांति से भरपूर होता चले, वो पवित्रता का सागर है, हमारी प्योरिटी बढ़ती चले, वो सर्वशक्तिवान है, हम शक्तिशाली बनते चलें, ये है उसके साथ का अनुभव, वो आनंद का सागर है, हमारा जीवन भी आनंद से खुशियों से भरता चले, उसके पास जाकर बैठ जाया करें, जिनको कुछ नहीं आता है सबको ये स्पष्ट हो कि योग का अर्थ कोई चित्रों से योग करना नहीं कि सामने शिव बाबा की लाइट जला दी उसको देख रहे हैं, ये योग नहीं है। सामने ब्रह्मा बाबा का चित्र है उसकी भ्रकुटी में शिव बाबा को देख रहे हैं, ये भी योग नहीं है, ये भक्ति है सब, ये तो उनके लिए जिनको कुछ नहीं आता। बाबा जहां है और जैसा है, साकार में आपने सुना होगा बच्चे, मुझे मेरे घर में याद करो। बाबा यहां साकार में आते थे तो कई लोग पूछते थे बाबा से, सामने ही पूछते थे, बाबा आप इस तन में आ गए हो, अब आपको यहां याद करें या वहां? बाबा कहते मैं कहीं भी आया हूं, तुम्हें मुझे मेरे घर में ही याद करना है, उसके साथ जाकर बैठ जाओ, मैं आत्मा परम धाम में बाबा के पास हूं। अभ्यास से होगा काम, नहीं तो संकल्प बहुत चलते हैं, फट से नीचे गिरा देते हैं, तो उसके वाइब्रेशंस हम में समाने लगेंगे। जैसे आपके घर में चार बर्फ की बड़ी सिल्ली रख दी जाए चारों ओर, तो क्या होगा, जल्दी ठंडे हो जाएंगे आप भी और कमरा भी, क्योंकि उसकी तरंगें फैलेंगी। गर्मी रख दी जाए, हीटर जला दिए जाए दो चार, उसकी गर्म तरंगें फैलती हैं। ठंडी हवा चलने लगे, उसकी शीतल तरंगें फैलती हैं। भगवान के पास बैठ जाएं, जो कुछ हैं उसके वाइब्रेशंस हम में समाने लगते हैं। ये विधि है उससे सब कुछ लेने की, हम उससे शक्तियां मांगते नहीं हैं। बाबा हमें शक्तियां दो, सहन शक्ति दो, बाबा ने उत्तर दिया था, बच्चे मांगते हैं बाबा सहन शक्ति दो, बाबा कहते हैं दो नहीं दे दी हैं, लो भी नहीं दे दी हैं, यूज करो। और यूज करने का तरीका है, जिनको सहन शक्ति चाहिए वो यूज कर लेना, सवेरे 6 बजे 5 बजे 4 बजे, मैं सहनशीलता की देवी हूं, याद दिला दो अपने को, आपकी सहन शक्ति जागृत हो जाएगी, मैं सहनशीलता का देवता हूं, सहन शक्ति आपकी जागृत हो जाएगी, वो काम करने लगेगी। ये तरीके हैं। दूसरी चीज, हमें अपने को व्यर्थ से, व्यर्थ इच्छाओं से, व्यर्थ की तृष्णाओं से, व्यर्थ की उलझनों से मुक्त करना ही है। ये हर एक को स्वयं करना है, कोई और नहीं करेगा। कोई और करेगा या स्वयं करेंगे? कुछ ऐसी चीजें मनुष्य ने पकड़ी होती हैं जो व्यर्थ हैं, जिन्हें छोड़ा जा सकता है और जिन्हें छोड़ने से बहुत सुख मिलता है, छोड़ दो उन्हें। आप सब तो बड़े हैं, कई लोग ऐसे भी हैं, देखो बच्चे युवक आपके फोन करते हैं, मैं बहुत थोड़ा समय फोन खोलता हूं तभी आ जाते हैं फोन, मैं RAS का एग्जाम दे रही हूँ, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, राजस्थान के जो ऑफिसर बनते हैं ना बड़े, हर स्टेट की वो नौकरियां होती हैं, यूपी की UPS, हर एक की होती है, गुजरात की GAS, वो स्टूडेंट बैठते हैं। तो एक लड़की फोन कर रही, मुझे एग्जाम देना है, मैं डिप्टी कलेक्टर बनना चाहती हूँ लेकिन मेरी पढ़ाई में रुचि नहीं हो रही है, याद नहीं हो रहा है। मैंने कहा तो किसी और को बन जाने दो। हंसने लगी, बनना तो मुझे ही है, मैं पूछता हूँ प्रश्न, फोन पे कितना रहती हो? बहुत ज्यादा, मुझे आदत पड़ गई है फोन पे ज्यादा रहने की। फोन पे बड़ी माया है ना, बहुत चीजें आती है। माताओं को पता नहीं, मुक्त ही रहना, पता करना भी नहीं। गंदगी आती है इसमें बहुत रोज। तो मैंने कहा देखो, अगर तुम्हें बड़ा ऑफिसर बनना है तो मोबाइल छोड़ दो, अभी कम से कम एक साल तो छोड़ दो, जब बन जाओ तब ले यूज करना। कहा तब तो टाइम ही नहीं मिलेगा ना। मैंने कहा तो एक चीज छोड़ दो, या बड़ा ऑफिसर बनने के स्वप्न छोड़ दो या मोबाइल छोड़ दो। मोबाइल तो छोड़ा नहीं जाता। बोलो क्या उत्तर है इसके लिए? दोनों लड्डू हाथ में चाहती हैं, दोनों तो नहीं आएंगे। ये बहुत बड़ा बंधन हो गया, बहुत बड़ी माया। जो अच्छे अच्छे समझदार बुद्धिमान बच्चों को अपने अधीन कर बैठी है। अब देखो ये व्यसन नहीं छोड़ सकते, भले ही कंपटीशन में ना आए, अपीयर ना हो या क्लियर ना हो। आज एक लेख छपा था ऐसे राजस्थान पत्रिका, मैंने शायद एक मास के बाद अखबार देखा होगा, तो उसमें था कि आरजीएस की परीक्षा ये होती है मजिस्ट्रेट बनने वालों की, जो जज बनते हैं। तो कहा वो ट्रेनिंग देता है, कोचिंग देता है जो लिख रहा था। कहा बहुत सारे बच्चे बताते हैं हमें तो सब कुछ ही याद था लेकिन एग्जाम में बैठते भूल गया। तो वो बता रहा था कि कैसे टेंशन को कम करो। टेंशन को कम करने से आपके 10-15% मार्क्स बढ़ जाएंगे। देखो अगर 400 का पेपर है तो 60 नंबर बढ़ जाएंगे, बहुत बड़ी बढ़ोतरी है ये। वो भी ये कह रहा था मोबाइल पे बहुत कम रहो। तो हम सभी चेक कर लें कौन सी व्यर्थ की इच्छाएं, व्यर्थ की चीजें हमारे मन बुद्धि को बांध रही हैं, उलझनों में डाल रही हैं। ये गति योग की बहुत सूक्ष्म है। योग इतना ही है अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, पर ये अति गुह्य विद्या है। आपके मन में, मैं दो उदाहरण दे रहा हूं, आपके मन में जरा सा किसी का अवगुण बैठ गया, योग टूटा, आपको पता भी नहीं चलेगा। कोई व्यक्ति देखा आपने, आपने सोच लिया बड़ा खराब आदमी है, बस हो गया काम। खराब वो, नुकसान आपको, हो गया या नहीं? आपने किसी को देखा, उसके बारे में बहुत चिंतन चलने लगा, पर चिंतन योग समाप्त। ये इतनी सूक्ष्म चीजें हैं, इसलिए जिसको योग के परम सुख लेने हो, बाबा से वरदान प्राप्त करने हो, इस जीवन को सफल करना हो, वो अपने से मेहनत करें, उन चीजों को छोड़ दें जो इस मार्ग में बाधक हैं। प्रभु मिलन के बाद का मार्ग बहुत सुंदर है ना। प्रभु मिलन तो हो गया, उसको देख भी लिया, उससे ज्ञान, सत्य ज्ञान भी ले लिया जिसकी बहुत जरूरत थी। एक मार्ग मिल गया, मुक्ति चाहिए उसका मार्ग, स्वर्ग चाहिए उसका मार्ग। अब हमारे हाथ में है हम अपने भाग्य को ऐसा श्रेष्ठ बनाएं। और मैं तो यही कहता हूं, आप सब भी यहां आए हैं, बहुत अच्छा चिंतन करना, हम अपने काम आए। देखो ये मेरा अपना चिंतन था कम से कम 20 साल पहले से, हम जन्म जन्म अपने काम आए। और किसके काम आए? अपने परिवारों के काम आए, अपनों के काम आए। अब भगवान के काम भी आ जाएं, लेकिन संसार के काम आ जाएं। देख लो आप में ऐसी उमंग आ जाए तो आप इस संसार के चमकते सितारे बन जाएंगे। जिन राहों पर संसार चल रहा है उससे हटकर मार्ग बनाना पड़ेगा। पड़ेगा या नहीं? ब्राह्मण ब्राह्मण संसार की हम बात कर रहे हैं, जिन राहों पर ब्राह्मण संसार चल रहा उससे भी थोड़ा अपने को हटाकर अपना स्वयं का श्रेष्ठ मार्ग निर्माण करना होगा। कोई उलझा हुआ है तेरे मेरे में, कोई मान शान की चक्री में इधर उधर घूम रहा है, भटक रहा है, कोई व्यर्थ के झंझावतों में उलझ गया है, हम अपना मार्ग स्वयं साफ करेंगे, कोई और नहीं करेगा, हमें स्वयं को करना है। तो जीवन सफल होगा, ये यात्रा सफल होगी, क्योंकि आने वाला समय कैसा है, संसार के लिए तो खतरनाक होगा, लेकिन उन ब्राह्मण आत्माओं के लिए जिन्होंने बहुत अच्छा कर लिया है, बहुत श्रेष्ठ समय भी आ रहा है। संसार आपकी ओर ही प्यासी नजरों से देखेगा, प्यास बुझानी पड़ेगी, देना पड़ेगा ही। जैसे भारत की परंपरा थी, जो अच्छे परिवार होते थे, भिखारी बहुत आते थे ना घरों में, आजकल शायद कम आते होंगे, हम जब छोटे थे तो 5-7 तो रोज आएंगे ही, तो नियम होता था कोई भी हमारे द्वार से खाली हाथ न जाए, थोड़ा भी दे देना। तो गेहूं भरे होते थे घरों में, वो गेहूं देते जाते थे, एक एक मुट्ठी भी, बच्चों का काम होता था ये, किसी को दाल दे दी, किसी को कुछ दे और दे दिया। आपके द्वार पर भी बहुत लोग आएंगे, क्या लेने, ज्ञान नहीं लेंगे, तब उनको चाहिएगी आपके वाइब्रेशंस की मदद। मोहवश आत्माएं बहुत पीड़ित हो जाएंगी, अति पीड़ित, उसमें हमारे वाइब्रेशंस ही उनको राहत देंगे, ज्ञान कोई सुनेगा नहीं। आप कहोगे ड्रामा चल रहा है, ज्ञानियों को भी कहोगे ना ड्रामा चल रहा है, कहा चल तो रहा पर मेरा ड्रामा ऐसा क्यों, यही पूछेंगे। बाबा को बुलाओ मदद करो, कहेंगे हमारी नहीं सुनता, तुम कहो, मेरे को भी बहुत कहते हैं लोग, हमारी नहीं सुनता बाबा, तुम कहो हमारी ओर से। मैंने कहा तुम्हारी क्यों नहीं सुनता ये तो सोचो, क्यों नहीं सुनता, सीधा सा उत्तर है क्योंकि तुम भी उसकी नहीं सुनते, तो सीधा हिसाब है, आप मेरी सुनोगे तो मुझे भी आपकी सुननी पड़ेगी ना। चलो क्वेश्चंस आपके ले रहे हैं, वीरेंद्र भाई है, आप अपने जिसको क्वेश्चन पूछना हो आगे आ जाएं। जिसको पूछना हो यहाँ के बैठ जाएं या इधर, ऑटो शुरू करो, ये लो और पूछो, वो इधर कर लेना टीवी की कैमरे की तरफ। हाँ कुछ नहीं करना, बोलो केवल।
भाई जी अभी आपने बोला कि अभी आज के यूथ में मोबाइल्स की एडिक्शंस बहुत ज्यादा हो रही हैं, इसकी वजह से मेंटल प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा है, बट योग का क्या ऐसा प्रयोग करें जिससे उनके एडिक्शन से वो क्विट हो सके।
हाँ वैसे तो समय के अनुसार ये एडिक्शन बहुत भारी पड़ रहा है, और जैसे मैंने कहा आपके बच्चे भी आपकी बात नहीं सुनेंगे, बैठ जाओ, बैठो, मैं एक विधि बता रहा हूँ। पहले तो आपका योग बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि आपके वाइब्रेशंस काम करें। जिस आपके बच्चे को ये एडिक्शन हो गया, ये व्यसन पड़ गया है कि मोबाइल पे बहुत रहते हैं रात को 2-2 बजे तक, फिर नींद कम होती है, नींद अच्छी नहीं होती मोबाइल के बाद, क्योंकि वही चलता रहेगा बुद्धि में, सबकॉन्शियस माइंड हाइपर एक्टिव हो जाता है, वो सोने नहीं देगा, अनिद्रा का भी यही कारण है। तो आप जब वो सोए हो सवेरे के समय 4 बजे 5 बजे 6 बजे 5-7 मिनट 10 मिनट उन्हें वाइब्रेशंस देंगे बहुत अच्छे, सर्व शक्तिवान की किरणें मुझे आ रही हैं, मुझे आत्मा से इस पर पड़ रही हैं। अगर वो घर में ही है आपके, दूर भी किया जा सकता है, अगर वो आपके घर में ही है तो उसके आसपास जाके वाइब्रेशंस दे दो, और फिर उसे आत्मा देखकर बहुत अच्छे संकल्प करो, उसे जैसे बात करो, जो बात आप मुख से करते हैं ना, भाई इसको छोड़ दो, इससे ये हो रहा है वो हो रहा है, वो बुक से नहीं करो, माइंड टू माइंड आत्मा देखकर मन से बात करो, तुम बहुत अच्छे हो, पहला संकल्प यही देना, तुम बहुत समझदार हो, तुम्हें अपने भविष्य को सुंदर बनाना है, ये मोबाइल तो बहुत विनाशक है, बुद्धि को भटका रहा है, ब्रेन को डैमेज कर रहा है, पढ़ाई में बाधा पैदा कर रहा है, डिस्टर्बेंस हो रहा है, इसको छोड़ दो, कमांड देंगे लास्ट में, इसे छोड़ दो, रोज, लेकिन सेम टाइम माना उसी समय रोज करना है, तो आप देखेंगे 7 दिन में उस पर असर होने लगेगा, 21 दिन में बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। क्लियर है? ये सब करेंगे। अभी पूछ लो, हाथ उठा दो, वहीं से बोल सकते हो, इधर आने में डर लगता हो तो। हाँ बोलो, सिर में भाई। हाँ, ये समस्या कुछ लोगों की होती है, योग करते सिर भारी हो जाता है, इसलिए तो योग को सहज भाव से करना है। कलयुग के अंत में आते आते सभी के ब्रेन बहुत कमजोर हुए हैं। इसका कारण ये है कि आत्मा ही शरीर को चलाती है, तो आत्मा ही कमजोर हो गई तो ब्रेन का निर्माण भी गर्भ में ऐसे ही हुआ है। बाकी रही सही कमी, इन सब चीजों ने पूरी कर दी, पढ़ाई का प्रेशर, समस्याएं परिवारों की, मोबाइल, कई बातें हो गई जिससे ब्रेन पे दबाव रहने लगा, प्रेशर में रहने लगा ब्रेन। इसलिए योग जब करते हैं तो बुद्धि को स्थिर करना होता है ना, तो वो भी एक तनाव जैसा लगता है, कई योग स्ट्रेन पड़ता है, जबरदस्ती एकाग्र करना पड़ता है, इसलिए सिर भारी होने लगता है। सहज भाव से योग करेंगे, चलते फिरते, मैं आत्मा हूं, सारथी हूं, ये मेरा शरीर है, 5000 वर्ष हो गए हमें संसार में आए, अभी जाना है, चिंतन जो आप सब जानते हैं। दूसरा, स्वमान का अभ्यास। स्वमान बहुत बड़ी चीज है, अनेक ब्राह्मण इसको जानते नहीं है, रटते हैं इसको, रटने की बात नहीं, नशा हो जाए मैं बहुत भाग्यवान हूं, नशा हो जाए मैं बहुत महान आत्मा हूं, भगवान से मिलन हो गया, ये स्वमान है सब। इसमें रहेंगे, ब्रेन को एनर्जी मिलती रहेगी, बाकी 21 दिन अपने ब्रेन को दोनों हाथों से एनर्जी देना है, करेंगे सभी, हाथ मलेंगे। मैं ये बार बार सिखाता हूँ, फिर भी बहुत लोग इसको जान नहीं पाते हैं, अभी आप सब जान लें, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, 2-3 बार करें, अच्छी तरह हाथ मलेंगे। अब देखो, आपके हाथों में एनर्जी आ गई है, जो आपने संकल्प किया वही हाथों से निकलने लगा है, छोड़ के देखो, ऐसे आ गए वाइब्रेशंस। अब इसको जहां रखेंगे ये वहीं जाएंगे, घुटने दर्द दो घुटनों पर रख देना, सिर भारी है ऐसे आंखें बंद कुछ देर, फिर दोबारा मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, फिर ऐसे 10 मिनट सवेरे 10 मिनट शाम को, 21 दिन कर लो, टाइम फिक्स करके करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। टाइम फिक्स माना सवेरे 6 बजे कर रहे तो रोज 6 बजे, इसको टाइम फिक्स कहेंगे, तो ब्रेन उसी समय एनर्जी लेने के लिए तैयार हो जाएगा। और बैठ के अभी थोड़ा योग कम करेंगे, 10-15 मिनट एक टाइम में बैठे, फिर धीरे धीरे अच्छा होगा, टाइम बढ़ा सकते हैं।
और किसी का भी प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं,
खड़े हो जाओ,
खड़े होकर पूछ सकते हैं, भाई लोग भी
आ जाओ, यहाँ आ जाओ, तुम्हें तो डर नहीं ना माइक पे, आ जाओ। कई लोग माइक पकड़ते ही भूल जाते हैं क्या कहना था, पता नहीं, चलो डर भी निकलेगा, मुंह उधर करो, स्विच ऑन ही रखो, ऊपर करो।
ओम शांति। भाई जी, जैसे कि आजकल घर के बच्चों में मोबाइल के अलावा एक दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि यंग जनरेशन में जो टीनेजर्स हैं मोबाइल का यूज तो करते ही है, लेकिन उनमें रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, ब्रेकअप, तो जब रिलेशनशिप रहता है तब तो ठीक है, लेकिन जब ये ब्रेकअप वाली स्थिति बनती है तब वो खुद भी डिप्रेशन में जाते हैं, उनका प्रभाव घर वालों के ऊपर भी काफी पड़ता है।
बहुत अच्छा, मैं इसे क्लास में खोलूंगा तो नहीं, क्योंकि ये कलयुग के अंत की भारी माया है और इसका कारण है। अब आप सब यहाँ ज्ञानी बैठे हैं, इसका कारण आप जान जाएंगे अच्छी तरह। बिल्कुल अब एंड आ गया है तो सभी के शरीरों में, मैं शरीरों की बात कर रहा हूँ, काम वासना बहुत बढ़ गई है भोजन के कारण। माँ बाप में अगर बहुत ज्यादा काम वासना थी उसका असर आ गया, तो मन तो विकृत हुआ ही लेकिन तन भी। इसलिए 12-13 साल की आयु होते लड़कों का अट्रैक्शन लड़कियों की तरफ, लड़कियों का लड़कों की तरफ, संबंध जोड़ लेते हैं, पवित्रता तो खत्म हो जाती है। इससे बचने का साधन तो यही है कि आप उन्हें प्योर वाइब्रेशंस दिया करें रोज। और माताएं ज्ञान में हैं अगर आपके घरों में, तो भोजन बनाते हुए मैं परम पवित्र आत्मा हूं ये बहुत याद करें। रही बात रिलेशन टूटने की, वो सबका ही टूटता है लगभग, क्योंकि जो लड़का लड़की से प्यार कर रहा है वो 4 से और कर रहा है, ये लड़की को पता नहीं है। जब उसे पता चलता है अरे ये तो गड़बड़ हो रही है, तो डिप्रेशन में आ जाती है। ये असली कारण है। और ये प्यार, क्योंकि दैहिक प्यार होता है तो ये सच्चा प्यार तो होता नहीं। कोई किसी को कभी भी लात मार दे जाओ, देर नहीं लगती, बहुत हो रहा है। लड़कियां ज्यादा सेंसिटिव होने के कारण डिप्रेशन में आ जाती हैं जल्दी, कहीं लड़के भी आते हैं। आप अपने घरों के वाइब्रेशंस प्योर बनाएं, यही तरीका जो मैंने सवेरे का बताया, उन्हें वाइब्रेशंस देकर माइंड टू माइंड बात करेंगे। दोष उनका नहीं है, उनके अंदर कामुकता इतनी बढ़ी हुई है कि वो अपने को कंट्रोल नहीं कर पाते। बस इतना ही मैं क्लियरली आपको कह रहा हूं, आप परेशान भी ना हो, क्योंकि ये खेल अब पूरा एंड में आ चुका है। आ जाओ आगे,
आ जाओ जी, आप आगे आ जाएंगे,
जल्दी आ जाओ। जिसको हाथ पूछना है यहाँ आ जाओ, बैठो आके, इधर बैठो।
आज ही पहले भी आज ही जो जिसका प्रश्न है ना,
भाई भेजो पड़ोसियों को, देखो माता खड़ी है, आ नहीं रही, आ जाओ, नहीं तो आने में टाइम जाता है। बैठ जाओ।
ओम शांति भाई जी, मेरा प्रश्न भोजन को लेकर है। कभी कभी ऐसी विषम परिस्थितियां आ जाती है कि हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। अभी छोटी सी एक इंसिडेंट बता रहे हैं कि राखी का जब प्रोग्राम था तो हम मिलिट्री हॉस्पिटल में गए थे, तो वहां पर हम ऑफिसर्स को राखी बांध रहे थे, तो उन्होंने इतना प्रेशराइज्ड कर दिया कि नहीं आप चाय पीजिए, हम आपके वहां जाते हैं बृहस्पति को भोग बनता है, हम तो खुशी खुशी खाते हैं, आप क्यों नहीं खाते। वो बैठ गई हमारे सामने, वो लेफ्टिनेंट कर्नल थी, बैठ गई और चाय मंगवा दी और कहने लगी आपको पीनी ही है। तो उस समय ऐसी कंडीशन में हम क्या,
ऐसी कंडीशन में चाय को दृष्टि दो, 3 बार याद करो मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, 3 घूंट पी लो और का हो गया बस।
वो हमसे, वो कैंटीन में गई और हमारे लिए चाउमीन लेके आ गई।
हाँ, उसे कह दो।
और बहुत सारे पैकेट लाए, तो हमने थोड़ा सा बाबा को याद किया, हमने कहा बाबा क्या करें, तो हमने कहा पैक कर दीजिए हम घर जाके खाएं।
हाँ बस ऐसे ही, बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने, माल बहुत मिल गया होगा, बांटते ना उसे। अब उनकी भावना होती है ना, किसी भाई ने प्रश्न किया था ये दीदियां हमारे घर खाना क्यों नहीं खाती, भाई दीदियों के अपने नियम है, हम भी नहीं खाते, किसी के घर में जाते हम भोजन नहीं करते, थोड़ा बहुत ले लेते हैं, बाकी हमारे जो यज्ञ में समर्पित हो जाते हैं उनके लिए नियम थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, क्योंकि बहनें अगर सब जगह जाके भोजन करने लगेंगी तो ये वैसे भी अच्छा नहीं लगता है, हमारी ये मर्यादाएं। ठीक है,
थैंक यू भाई जी।
मैं बताऊं, मैं एक बार फिजी में गया था तो एक कमिश्नर थे, मेयर, उनके पास मिलने गए, तो हमारे जाने से पहले ही एक छोटा रूम भर के रखा था, समोसों की प्लेट, पेड़ों की प्लेट और कई प्लेट। अभी बहनें भी थी हमारे साथ, देख लिया ये माल हमारे लिए आया है, उन्हें प्यार से समझा दिया और वो इतने खुश हुए हमारी धारणाओं को देख के, कहा यू आर राइट। तो हमें समझाना भी आना चाहिए, हमें धारणाओं में इतना बल होना चाहिए कि जो हम कह रहे हैं उसको लोग स्वीकार करें, फिर भी थोड़ा कुछ ले लिया कहें, उसमें ऐसा नहीं हम कोई खत्म हुए, इतना परेशान भी होने की जरूरत नहीं। क्योंकि सब गृहस्थी बैठे हैं, गृहस्थ वालों को रिलेशनशिप में जाना पड़ता है, आपको अपनी बहन के पास जाना पड़ता है शादियों में, बर्थडे पर, तो थोड़ा कुछ जो चीज मशीन मेड है वो ले ली, कोई हर्जा नहीं।
ओम शांति भाई जी, मेरा प्रश्न है कि आजकल तो जैसे परिस्थितियों में है मोबाइल से ही के द्वारा पढ़ाई जा रही है सभी बच्चों को। एक तरफ तो हम उनसे कहते हैं मोबाइल से होमवर्क करिए, वातावरण तो नहीं मिल पाता है, मगर उसके बाद भी उन्हें मजबूर होकर वो पढ़ना पड़ता है।
देखिए मोबाइल की ऑनलाइन जो पढ़ाई है वो तो पढ़ाई है नहीं, एक्चुअली उसी का नुकसान हुआ कि बच्चे फिर इधर उधर देखने लगे मोबाइल पे, उसे नुकसान बहुत हो गया। इसलिए मैंने कहा आप ज्यादा सोचेंगे नहीं, क्योंकि इस समय का इफेक्ट है, इसको बदलना किसी के वश की बात नहीं है, इसलिए थोड़ा हल्के भी रहेंगे और बच्चों को थोड़ा समझा के भी रखेंगे। अगर बच्चे छोटे हैं, कई छोटे बच्चे अच्छे समझ जाते हैं, लेकिन ऑर्डर से नहीं समझाएंगे, प्यार और स्वमान के साथ, तो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे।
आजकल तो बच्चे मोबाइल पे कार्टून देख देख के ही खाना भी खाते हैं।
वही हो गया ना, पढ़ते
इतनी आदत खराब हो गई उनकी,
पढ़ते पढ़ते वो कार्टून में चले गए, गेम्स में चले गए। तो ज्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि मेरे अनुसार ये मेरी अपनी मत है, 2025 के बाद ये एजुकेशन जैसे 50 साल में बढ़ी है, 5 साल में ये उतनी डाउन चली जाए, क्योंकि साधन ऐसे बन जाएंगे, कारण ऐसे बन जाएंगे, इसलिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं।
जो दूसरा प्रश्न ये था कि जो प्रोफेशनल वाले हैं, जो व्यवसाय में है, प्रोफेशन में है, वो अपनी योग की दिनचर्या किस प्रकार व्यवस्थित करें, ये लिमिट
देखिए तो बड़ा क्वेश्चन है और इस पे तो एक पूरे क्लास की जरूरत है। आप अपने व्यवसाय में 3 टाइम तो ऐसे फिक्स कर लें जब 10-10 मिनट आप कुछ अच्छा कर सकें, साधनाएं किसी भी तरह की कर सकें, महावाक्य देख सकें, सवेरे उठ सकें तो सो बेटर, उससे अच्छा कुछ नहीं है। और दुकान वालों को, बिजनेस वालों को शाम का टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन जो जॉब्स में है अगर शाम को भी योग हो जाए आधा घंटा भी, तो आपकी सारी मानसिक थकान भी दूर हो जाएगी और शाम का योग भी बहुत पावरफुल होता है।
तो धन्यवाद, ओम शांति।
आओ माता जी।
ओम शांति भाई जी, मैं जब भी योग बढ़ती मेरा दूरी आत्मा बहुत दबाव देती है।
क्या करती है?
दूसरी आत्मा सिर पर झाट के देती है,
दूसरी आत्मा आ जाती है। ठीक है, मेरे से मिल लेना बाद में। अब दूसरी आत्मा को बाबा को बुला लिया करो तो बाबा आ जाया करेगा।
जब भी सोती है ना तो
बैठ जाती है ना तुरंत, 7 बार याद करना मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, तो भाग जाएगी डर से।
क्योंकि ना खुलता है कोई बार खुलता है मास्टर सर शक्तिवान बिघिन विनाशक, रखती है गाड़ी।
एक बैज ले लो छोटा सा, यहाँ मिलते हैं, उसको राइट हैंड में लेके 21 बार संकल्प करना मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, फिर रोज लगाना, रात दिन पहनना, कोई भी आत्मा आएगी नहीं, बैज से घबराती आत्मा आए,
सिर को भी हल्ला देती।
हाँ ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, आपके सिर पे बाबा का हाथ है। चलो देखो माता ही नहीं रखी ना, ओम शांति। चलो भाई लास्ट क्वेश्चन कौन पूछेंगे?
लास्ट क्वेश्चन कोई भी, बहने भाई भी कोई भी पूछ सकता है।
चलो ठीक है, अब योग कर लें। बहुत अच्छा आप सभी आए, ज्ञान सरोवर की शोभा बढ़ गई, लग रहा था लोग डर जाएंगे, मैं आपको बता दूं डरने की बात नहीं, ये जो नया आया है आज मैं पढ़ा उसका डिटेल कि ये फैलता तो जल्दी है पर इसका प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ता, इसलिए कोई मरेगा नहीं, मरने की चिंता से मुक्त होके मस्त रहना। अभी तो 3 ही केस आए भारत में, इतने घबरा गए भारत वाले, पता नहीं महाकाल ना आ गया हो, ऐसा कुछ नहीं है, मस्त रहना, डर बिल्कुल नहीं।
भाई जी किसी को अगर बहुत ज्यादा फियर का प्रॉब्लम है तो उसको कैसे?
सवेरे उठते ही जैसे ही आप उठेंगे पहले 3 मिनट में ही 7 बार कर लेना, ज्यादा हो तो 21 बार कर लेना, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, फियर लेस हूँ, निर्भय हूँ, अंतर मन का भय।
थैंक यू।
चलो लाल लाइट भाई।